वो बहुत सारे जो दूसरे प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो कि एक्सप्लोरेशन में हैं ऑयल एंड गैस की, उनको अब ये इन्होंने इंसेंटिव्स देने शुरू किए हैं कि भाई तुम लोग जरा एक्सप्लोरेशन अपनी तेज करो, तुम लोग जरा
एंड
थोड़ा
दैट
सा
अगेन इट विल टेक टाइम,
इट विल टेक टाइम, यस यस, क्योंकि ऑयल एंड गैस कोई मतलब आलू उगाना तो नहीं है ना.
एग्जैक्टली, ये तो नहीं है कि अभी आपने अलाउ किया तो वो जो है नेक्स्ट ईयर तक गैस देना शुरू कर देंगे.
नहीं, क्योंकि वो सारी मशीनरी, पाइप्स, चीजें, वो सारी सेटअप करनी है. और सबसे तो बड़ी बात ये सारे काम करने के लिए पहले तो बंदे चाहिए ना माजिद भाई.
एग्जैक्टली,
ये आपको जियोलॉजिस्ट चाहिए जो कि पहले तो फिगर आउट करेंगे कि जमीन के अंदर किधर से गैस और ऑयल आपको मिल सकता है. दिस इन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग प्रोसेस.
फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप गैस तलाश करें वहां से,
तो वही दैट्स द जॉब ऑफ द जियोलॉजिस्ट, राइट. वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करते हैं कि हाँ जी अगर इधर हम ड्रिलिंग करें, लेकिन उनकी भी जो होती है वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं कि यहां पे मिलेगा, 10 में से जो है 5 टाइम्स नहीं भी मिलता, 5 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी होती है कि जिधर उसने बड़ा वो टॉप जो जियोलॉजिस्ट है उसने कहा जी यहां पे गैस है, उन्होंने खोदा तो गैस नहीं, उस खोदने में बहुत टाइम लग जाता है.
Exactly.
फिर वो ढूंढने में, फिर वहां पे अगर जब मिल जाती है तो वहां पे फिर गैस पाइपलाइंस बिछाना, तो पूरा मतलब है इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल यू नो चेंज दैट इज रिक्वायर्ड इन दैट एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो इट्स नॉट ऑल दैट इजी, यू नीड लेबर, यू नीड एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स. तो वो सारे जब आप हायरिंग करेंगे ना, फिर तो हायरिंग करेंगे तो ये चीजें जो है शुरू, तो इसलिए इट्स नॉट इजी. बहरहाल जी ये इन्होंने कहा है, तो अब आप देखेंगे अब क्या होता है अगले साल तक. तो वो कह रहे हैं जी कि ये सारी मोस्ट ऑफ द ये जो डील्स हैं हो सकता है 2025 तक बिल्कुल कंप्लीटली कलैप्स कर जाएं रशिया के साथ.
एग्जैक्ट.
तो इसके लिए हमको जल्दी कुछ करना है. अच्छा जनाब, रशिया के साथ तो जो मामलात हैं, टर्की जो है आजकल बड़ा नाराज नजर आ रहा है, और टर्की जो है उसकी नाराजगी आपको खुद ही नजर आएगी इसलिए कि स्वीडन और फिनलैंड जो है उन्होंने अब नेटो के लिए एप्लीकेशन डाली हैं, और जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने भी आज कहा कि बिल्कुल लेजिटिमेट है उनकी, जाहिर है भाई आपका इंटरेस्ट है तो वो आपको लेजिटिमेट ही नजर आएंगी उनकी एप्लीकेशन. तो नेटो के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस डाली हैं. अर्दोगान साहब बहुत गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने नेटो के मेंबर्स को कहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि कर्डिश हमारा एरिया जो है उसको ये बैक करते हैं, कर्डिश रेबल्स को ये बैक करते हैं, वो सारे इन दो मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा बड़ा कंसर्न है, हमारी सिक्योरिटी का कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपने इनको जो है नेटो की मेंबरशिप दे दी. टर्की जो है बाय द वे हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी नेटो का मेंबर है. अच्छा, इसमें अब क्या हुआ है कि ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग, उन्होंने कहा है कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया है कि भाई आप ये जो कर्डिश मूवमेंट के जो थ्रेट्स बता रही है टर्किश गवर्नमेंट उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि उनका ये जो दो नॉर्डिक जो स्टेट्स हैं उनका बड़ा यहां पे है कंसर्न है, तो आप क्या कहते हैं. तो उन्होंने कहा जी कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम उनका कंसर्न समझ सकते हैं, हम उनके कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और फाइनली जो अग्रीमेंट होएगा उसके साथ हम आगे जाएंगे, और हम सबको लेके साथ चलना चाहते हैं. तो जाहिर है कि नेटो का ये पुराना मेंबर है टर्की, उसको नाराज नहीं कर सकते, तो उसके साथ हम बात करेंगे, तब देखेंगे क्या बात करेंगे. फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, उन्होंने आज बड़ा क्लियर किया है एक पॉइंट को. उन्होंने आज एक इंटरव्यू दे रही थी इटालियन न्यूज़पेपर कोरियर डेल सेरा को, और उसमें इनसे पूछा गया कि आप नेटो के मेंबरशिप तो ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब नेटो का कोई मेंबरशिप लेता है तो नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स भी वो रखता है और मिलिट्री बेसिस भी बनाता है, तो इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ना कहा है. उन्होंने कहा जी कि यस नेटो की मेंबरशिप यस, लेकिन ना तो हम अपने मुल्क में न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे और ना ही हम उसके ऊपर कोई स्पेंड करेंगे पैसे, और ना ही हम किसी की भी मिलिट्री को इंक्लूडिंग नेटो के लिए हम कोई मिलिट्री बेसिस जो है वो अपॉइंट नहीं करेंगे. तो उन्होंने कहा जी कि फिर आपका उसका हिस्सा बनने का क्या मतलब है. उन्होंने कहा जी हमारा हिस्सा मतलब बनने का ये मतलब है इन केस हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो नेटो के फोर्सेस बीइंग पार्ट ऑफ नेटो हमारे हेल्प
मगर
करेंगे.
उनको पता होना चाहिए कि गिव और टेक है.
हाँ, गिव और टेक है.
तो अगर आपको जब वो प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर जो नेटो की पॉलिसी
बेसिस तो मांगेंगे वो फिर बेसिस मांगेंगे. लेकिन इसी तरह की सिमिलर बातें आज स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैकडेलन एंडरसन, उन्होंने भी आज जो है वो उन्होंने भी की हैं. तो ये दोनों लेडीज जो हैं ये अब कह तो रही है ऐसा, लेकिन अब देखें क्या होएगा. और अगर ये हुआ कि ये सिर्फ नेटो के मेंबर्स बने और इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप किए और बेसिस ना दी, तो शायद फिर टर्की मान जाएगा, शायद मान जाएगा. तो कोई तो प्लान इनको खैर वर्कआउट करना पड़ेगा, अभी तक तो इन्होंने यही किया। अच्छा जी, ये जो है आज की खबर, थोड़ी सी चिंता इसने जताई है अमेरिका के अंदर। हुआ ये है कि अमेरिका में इन्होंने आज सेनेट के पास, आपको पता ही है कि हमने कुछ दिन पहले बताया था, $40 बिलियन का एक बिल पास करना चाहते हैं बाइडन साहब, जो कि वो चाहते हैं कि हम इस ये मिलिट्री एड और दूसरी एड जो है यूक्रेन को दें, $40 बिलियन तो ये फाइनली खैर जी सेनेट जो है उसने इसको पास कर दिया है, क्योंकि ना तो रिपब्लिकन्स ना तो डेमोक्रेट्स कोई भी अपने लिए बुरा नाम नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि कल उधर खराबी हो जाए और कल हमारे पे ब्लेम आ जाए कि तुम लोगों ने अपोज किया था इसलिए वो मुल्क जो है बर्बाद हो गया। तो इसको जी इसको पास कर दिया गया है और आज ये 86-11 से पास हुआ है, यानी कि 86 इन फेवर थे, 11 इसके अगेंस्ट थे। इसके अंदर मिलिट्री, ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन, हेल्थ केयर और रिफ्यूजीज का ख्याल करना और बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी। और इसके ऊपर अब लोगों ने अमेरिका में कहा है कि भई ये इतना पैसा आप क्यों मुल्क से फ्लश आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने मुल्क में बड़े क्राइसिस सिचुएशन है। तो बहरहाल लोगों ने कहा है, सेनेट ने नहीं कहा है, बहरहाल अब ये बिल जो है भेजा गया है बाइडन साहब को, तो बाइडन साहब का ही बिल था ये, तो वो अब उसको साइन कर देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। And then, you know, they are going to go ahead with it. Biden साहब जो हैं 6 दिन के दौरे पे जा रहे हैं जी साउथ कोरिया और जापान, और उनका मकसद यही है एक दफा से फिर से चाइना को ये बताना चाहते हैं कि तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो इस इलाके में वो ठीक नहीं है, हमने तुम पे नजर रखी हुई है।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
और इसके अलावा वो ये भी कहना चाहते हैं बीजिंग को कि तुम्हारी जो सपोर्ट है रशिया के लिए उसको हम प्यार से नहीं देख रहे हैं। तो साउथ कोरिया में इनकी मुलाकात होगी जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, और जापान के प्राइम मिनिस्टर से फिर करेंगे ये फूमियो किशिडा से मुलाकातें करेंगे, और इनके साथ जाहिर है कि पेंडेमिक के ऊपर बात की जाएगी, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका क्वाड उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, और नॉर्थ कोरिया जो अपना बहुत ज्यादा असर बढ़ा रहा है और चाइना जो असर बढ़ा रहा है, इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो ये सारी बातें जो है, ये आज जब जा रहे थे यहां पे तो इनसे पूछा गया कि भई आपके मेन गोल्स क्या होंगे, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ा रहा है उसके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न है और हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे इनके साथ। क्वाड का हिस्सा जो है बाय द वे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी हैं, तो हो सकता है कि वहां पे इनकी वर्चुअल मीटिंग्स जो है वो भी हों इन बाकी लीडर्स के साथ भी, तो अब देखें क्या होता है यहां पे। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है, ये जो भी हमने आपको बताया ना कि 40 बिलियन का जो इन्होंने बिल पास करने वाले हैं, एक बार कर दिया सेनेट ने यूक्रेन के लिए, आज वॉशिंगटन पोस्ट की बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, और इस शॉकिंग न्यूज के मुताबिक जो कि हमने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी कि डॉयचे विला ने कही है, जर्मन जो मीडिया हाउस है उसने, कि अमेरिका के अंदर जो है वो रिसेशन आ सकता है, आज वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कह दिया है कि ये जो बैक टू बैक इतना ज्यादा स्लम देखा जा रहा है वॉल स्ट्रीट के ऊपर, तो उसकी वजह से अमेरिका के अंदर रिसेशन आ सकता है। इन्होंने कहा जी कि पिछले 2 साल से सबसे लार्जेस्ट स्लम जो है स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है, प्राइसेस जो हैं ऊपर जा रही हैं, लोगों के प्रॉफिट्स जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं। वेल्स फार्गो ने भी, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, और इन्होंने आज वेल्स फार्गो वालों ने बहुत लोगों को आज ये एडवाइज किया है कि अपने फंड्स को यूटिलिटीज के अंदर रखें, इधर उधर बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट्स में डालने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जो मूडीज एनालिटिक्स हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने भी कहा है कि तकरीबन 30% तक हम सोचते हैं कि रिसेशन अमेरिका में नेक्स्ट ईयर आ सकता है।
वाओ,
तो अगर अमेरिका में आया तो मजद पाई फिर कनेडा कितने जाएगा, कनेडा के साथ फिर वो रिपल इफेक्ट होता जाएगा ना, फिर वो फैलता जाएगा यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता। तो और इसके साथ साथ आज के जो बड़े अखबार हैं इनके अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी बड़ा वो आया है कि ये क्रिप्टो करेंसीज में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक पोंजी स्कीम्स हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि जमाना जो है बड़ा खराब चल रहा है। तो ये इस तरह से आज काफी
क्रिप्टो करेंसी आप देख लेना कि पिछले कई महीनों से इस डाउन स्लाइड एंड वो कहां 66,000 पे था
जी,
अब जो है वो 29-30 पे पहुंच गया
जी। जी बिल्कुल ऐसे, तो वही उन्होंने उन्होंने कहा है। आज तो बड़ी रिपोर्ट्स आई हुई हैं इसके ऊपर, सारे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ही तकरीबन, उन्होंने तो कहा है कि ये इट्स जस्ट अनदर पोंजी स्कीम, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, ये जो अभी थोड़ी सी बात आरफा बाजी ने जिसका जिक्र किया स्लाइटली कि ये एक फंबल कर दिया जॉर्ज बुश जो थे, ये जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये एक बात कर रहे थे टेक्सास के अंदर, स्पीच दे रहे थे, तो कहना ये चाहते थे कि ये बिल्कुल ही अनवांटेड जो है और अनजस्टिफाइड ब्रूटल इन्वेजन है इसमें, ये जो रशिया ने किया है उसमें यूक्रेन में, लेकिन इनके मुंह से इराक निकल गया, इनके मुंह से निकल गया इराक, फिर खुद ही हंसना शुरू हो गए और कहते हैं यस इराक टू। अच्छा, अब लोगों ने इनको पकड़ लिया इस बात पे, उन्होंने कहा कि यस एग्जैक्टली, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो हैं उनको जो कुछ भी इंटेलिजेंस दी गई थी, जो इन्होंने 2003 में इराक में इन्वेड किया था, वो फॉल्टी इंटेलिजेंस थी और इनको बड़ा उस वक्त क्रिटिसाइज किया गया था इनकी गवर्नमेंट को। एंड्रयू स्टॉलन हेन यूरोपियन मीडिया डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, वो कहते हैं जी हम इस फंबल को फ्रॉइडियन स्लिप ऑफ सेंचुरी कहेंगे कि जैसे उसने कहा था कि साइकोलॉजिकली आप कुछ भी बोल देते हैं पागलपन में तो ये उस जुमरे में आएगी चीज, जब इनको बार बार बताया जाता था, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी बताया गया था कि ये गलत फैसला तुम लोग कर रहे हो, इराक का इन्वेजन तुम एक पूरी जनरेशन को बर्बाद करने जा रहे हो, तो इन्होंने बात नहीं सुनी थी। इसी तरह जो है पूया एली मैगम, मिडल ईस्टर्न हिस्टोरियन एट MIT जो मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें उन्होंने कहा वाओ, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा वाओ फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इन्होंने कन्फेस तो किया कि इन्होंने इराक के अंदर जो इन्वेड किया था वो गलती थी। इसी तरह राइटर मैरिस कबस ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 17 साल में मैंने पहली ये अच्छी खबर और राइट ट्रूथफुल खबर सुनी है कि जी इन्होंने इन्वेड किया था इराक के अंदर, और क्योंकि वो कहते हैं जी कि जब इन्होंने किया तो आप देखें कितनी खराबी पैदा की, कितने लोगों को डिस्प्लेस किया, और सबसे बड़ी बात इतनी खतरनाक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आइसिस जैसी, और उसको राइज ऑफ आइसिस टू प्लेस बिकॉज ऑफ देयर एक्शन। उसके अलावा यूके बेस्ड इराक जो बॉडी है काउंट प्रोजेक्ट, उसने कहा जी इसके अंदर ये जो इन्होंने इतना जुल्म किया उस मुल्क के ऊपर इन्वेज करके, 209,000 से ऊपर यहां पे जो है सिविलियन डेथ्स इराक के अंदर हुई थी इन मई 2003 ये यूएस इन्वेजन के बाद। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ऑन जस्टिस इन जिनीवा, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे बड़ा अग्रेशन था जो यूएसए ने शुरू किया था जब ये इराक के अंदर एंटर हुए थे। 2010 में डच इंक्वायरी एक जो होल्ड की गई थी बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट जो जजमेंट हम सामने लेकर आए हैं उसमें हमें पता चला है कि कोई बेसिस नहीं थे इंटरनेशनल लॉ के एक सॉवरन कंट्री के ऊपर जाके अमेरिका ने इन्वेड कर दिया था। कुआलालंपुर बेस्ड क्राइम्स कमीशन जो है उसने आज कहा है जी कि ये जो बुश और जो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, इन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, तो इनको एज वॉर क्रिमिनल स्ट्राइक करना चाहिए है जो कुछ इन लोगों ने किया है, और इसलिए ये जो इनके अंदर डेफिनेटली ट्विटर पे आज जो कहा जा रहा था कि डेफिनेटली इनके अंदर गिल्ट होएगा कि इनकी वजह से ना सिर्फ ये कि एक मुल्क बर्बाद हुआ, लोग मरे और लाखों ही लोग जो हैं वो बिल्कुल ही जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। अच्छा, बड़ी एक खूबसूरत किताब आई थी माजिद भाई कुछ अरसा पहले, मुझे नहीं पता आपने, ये जुलाई 2020 में एक बुक आई थी टू स्टार्ट अ वॉर हाउ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन टुक अमेरिका इनटू इराक, एंड दिस वाज रिटन बाय रॉबर्ट ड्रेपर। बड़ी खूबसूरत किताब थी, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड दिस, अगर आपने नहीं पढ़ी तो माजिद भाई आपको ही नहीं बल्कि सब लोगों को ये पढ़नी चाहिए। ये पेंगुइन जो बुक्स हैं उन्होंने ये इसको किया था और आप उस पे जो है जाके इसको ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं अगर आपको अब मिल जाती है। इसके अंदर माजिद भाई उसने ये जो रॉबर्ट ड्रेपर है उसने कहा कि 2003 में जब इन्होंने इन्वेजन किया था और 8 साल ये कॉन्फ्लिक्ट इनका रहा, 4,500 तो खाली अमेरिकन सोल्जर्स उसमें गए थे और बाकी लोग जो अमेरिकन जो थे वो उसमें गए थे, और उसके बाद उसने पूरी जो है हिस्ट्री इस पर लिखी है। अच्छा, इस किताब में लिखा हुआ क्या है, उन्होंने कहा जी उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चैनी साहब, ये CIA हेडक्वार्टर्स में वर्जीनिया में बैठे हुए थे और इनके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि जी ये जो बिन लादेन है जो इसने अटैक्स किए हैं आपके ऊपर, उस तरह के कोई अटैक्स जो हैं शायद सदाम हुसैन जो है कर सकता है। तो कहते हैं कि ये कहते हैं रॉबर्ट ड्रेपर ने अपनी किताब में लिखा है कि ये ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर जैसे अटैक तो कहीं मिडल ईस्ट से आया है लेकिन शायद बेल्जियम उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये ऐसी बात थी। तो कहते हैं इनको उसी वक्त मना किया गया था कि इस नैरेटिव को और आगे ना जाने दो, क्योंकि सऊदी लड़के इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो इराक के ऊपर जो अटैक करना है वो आपका बनता नहीं है, आप किस चीज से अटैक कर रहे हो इराक के ऊपर। तो इन्होंने कहा जी, डिक चैनी साहब ने कहा सीआईए हेडक्वार्टर्स में बैठ के, नहीं नहीं हमको इस चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। और कहते हैं फिर पूरा एक नैरेटिव इन लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर बिल्ड किया, सारी कौम को गलत तरफ लगाया, बार बार ये कहा कि इसके पास तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। और बाद में ये पता चला जब यूनाइटेड नेशंस के और इनके अपने खुद के भी अमरीका के जब लड़के वहां पर गए इंटेलिजेंस एजेंसियों के, तो उनको पता चला कि कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वहां पे नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा जो है नैरेटिव बिल्ड कर दिया था जिससे लग रहा था कि हां हां अब उसामा बिन लादेन के बाद शायद इराक का सदाम हुसैन हमारे पे अटैक कर दे। कहते हैं और इसके लिए इन्होंने झूठ किस तरह के बोले कि ये जैसे अफ्रीका से ये लोग खरीद रहे हैं येलो केक, यूरेनियम खरीद रहे हैं। कहते हैं ये इतनी कोई फनी बात है, और वो कहते हैं जी आप जरा इसको गूगल कर लें। कहते हैं उसने रॉबर्ट इसने ड्रेपर ने लिखा है, कहते हैं आप गूगल कर लो, आपको गूगल पे ये फैक्ट मिल जाएगा कि इराक ने कोई ये येलो केक यूरेनियम नहीं मंगवाया था, नहीं मंगवाया। तो कहता है इट वॉज एज सिंपल एज दैट, बट द इंटेलिजेंस वॉज सो फ्लॉड। अच्छा, इसमें उसने कहा जी कि इन्होंने जिस वक्त ये सारा अपने एलाइज को बताया ना कि हम इराक के ऊपर अटैक करने लगे हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ड्रेपर, अकॉर्डिंग टू हिम जर्मनी ने इनको बहुत ज्यादा जो है वो वार्न किया। जर्मनी ने एक आदमी के बारे में जो जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, ये कर्व बॉल एक जो था उसके बारे में ये बात कर रहे थे, और जर्मनी ने कहा कि इस आदमी का जो तुम्हें जो खबरें जो तुम्हें सीआईए को और तुम लोगों को दे रहा है ये गलत खबरें दे रहा है, इसकी खबरों के ऊपर यकीन मत करो। इराक के पास कोई, हमारी इंटेलिजेंस बताती है जर्मन इंटेलिजेंस कि इराक के पास कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है, डोंट गो देयर, डोंट डिस्ट्रॉय दैट कंट्री। अमेरिका ने बिल्कुल उनकी नहीं सुनी, वो उसी लाइन पे डिक चैनी की लाइन पे काम करते रहे, और इन्होंने अटैक उस मुल्क में किया, फिर ये वहां पे गए, फिर इनको कुछ नहीं मिला, फिर इनके पास रिपोर्ट्स आई कि कर्व बॉल जो था वो वाकई एक फेक था, उसकी रिपोर्ट फेक थी, उसने गलत इंफॉर्मेशन दी। लेकिन रॉबर्ट ड्रेपर कहता है जी कि जब आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के आपको बहुत सारे पागल दुनिया में मिल जाते हैं जो आपकी हां में हां मिलाते हैं, और आपने अगर सिर्फ उन पागलों को सुन के अपने डिसीजंस बनाने हैं फिर आप वही करेंगे जो आपने सोचा हुआ होता है, क्योंकि आप डिसेंटिंग वॉइस तो सुनते ही नहीं, आप तो सुन ही नहीं रहे। यानी जर्मनी आपका एल आया है, वो आपको मना कर रहा है, और आप अच्छा कहते हैं इस सिलसिले में एक लेटर भी जो था, एक लेटर भी आया इनके पास जो स्टेट डिपार्टमेंट है और जो इनके पास की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कहते हैं जी उसको तो शेल भी कर दिया, उसको तो पढ़ा ही नहीं। बाद में जब ये कर्व बॉल की चीजें सामने आनी शुरू हुई, फिर वो लेटर निकाला तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था ये सारी फेक इंटेलिजेंस है, रॉन्ग इंटेलिजेंस है, मत इराक में इन्वेड करो, मत उस मुल्क को बर्बाद करो, देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज क्राइसिस। वो क्राइसिस उस वक्त क्या था उनको नहीं पता था, जो कि बाद में आइसिस की शक्ल में सामने आया। तो बहरहाल फिर जो ये है, तो वो कहते हैं जी कि ये जो बुश साहब ने किया है ये उसका गिल्ट जाहिर है उसके उसको बोल रहा है। तो मुझे ये किताब जरूर पढ़ें, बहुत ब्यूटीफुल बुक है ये, इतनी कोई इंट्रीगिंग है ये किताब, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, आप सब लोग बल्कि पढ़ें। टू स्टार्ट अ वॉर, हाउ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन टुक अमेरिका इनटू इराक, वेरी वेरी सैड अकाउंट, यानी आपके कुछ मौकों पे आपके आंसू निकल आएंगे, ऐसी वो बड़ी इसने ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई है, और सारे जो है वो उसके अंदर बड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो थे उस वक्त, उनके पास बेसिकली वो पहला लेटर आया था, उनके बारे में सारी चीजें, कैसे वो आया, कैसे उन्होंने सारा शेल्फ कर दी चीजें, और व्हेन देन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड थिंग्स, ब्यूटीफुल बुक, वेरी नाइस, ये आप पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये सारा एरर ऑफ इनके अपने जो थे बस वो थे कि इन्होंने घुसना है और बर्बाद करना है उस कंट्री को, तो किया इन्होंने। इंडिया में जी राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के लीडर जो हैं, उन्होंने आज ऐसी बात की है कि इंडिया भड़क गया आज।
अच्छा,
हाँ, इंडिया भड़क गया है, खासतौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है हिंदुस्तान श्रीलंका की तरह दिख रहा है।
ओ
इन्होंने ये बात की है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन्होंने कहा है जी कि बहुत सारे इश्यूज में हिंदुस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह दिख रहा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई पेट्रोल की प्राइसेस हैं, कॉम्युनल राइट्स हैं, और पिछले 5 साल में ये कॉम्युनल राइट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने ग्राफ्स कुछ दिखाए, अपनी ये स्पीच कर रहे थे यहां पे, तो उसमें उन्होंने कुछ 6-7 ग्राफ्स दिखाए हैं, और उसमें इंडिया और श्रीलंका को 2017 से लेके 2021 तक मैच करके चीजें दिखाई, कंपेयर किया उसके अंदर कि भाई उसमें भी ये हो रहा था, इंडिया में भी यही हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इन्होंने कहा जी कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी खराबी का बायस बन सकती हैं। अच्छा, अब जब इनके खिलाफ बड़ा अप्रोर आ गया है तो और भी अप्रोर एक और भी आया है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं आपको पता ही है कि इस साल जो है हिंदुस्तान अपनी 75th इंडिपेंडेंस की बर्थडे मनाएगा, तो राहुल गांधी जी जो हैं उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया है टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन हिंदुस्तान की तारीख। और वो तो जाहिर है वो तो नेहरू और गांधी जी की तारीफ करेंगे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट को तो जरा खींचेंगे वो, तो अब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ये बात। तो वो कह रहे हैं कि ये क्यों जा रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए, लेकिन भाई जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हीं को बुलाया है, तो माजिद जमाल साहब को या शाज़िया मलिक को तो बुलाया नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे हैं जी अंदर की बात
अंदर
है ठीक है ना, तो ये जा रहे हैं। तो ये आज जनाब ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो है जो कश्मीरी लीडर हैं मोहम्मद यासीन मलिक साहब, उनको टेररिज्म के लिए जो है अब टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर, और इनको कहा गया है कि इसमें अंडर जब ये टेररिज्म के चार्जेस लगते हैं तो या तो इनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या किसी को जो है लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ये सारे चार्जेस मलिक साहब ने ना किए हैं, उसके लिए डिनाई किया है। जो जज प्रवीण सिंह थे उन्होंने कहा है कि ये इसके जो सारे जो इसके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके भी एफिडेविट लेकर आओ, और ये जो है ना सिर्फ ये कि ये जो गलत काम इसने किए हैं बल्कि इलीगली फंड्स भी इसने रेज किए हैं, कॉन्स्परेसी क्रिमिनल कॉन्स्परेसी में ये इन्वॉल्व था, और सेडिशन के चार्जेस जो हैं इसके ऊपर लगाए गए हैं। तो यासीन मलिक ने कहा है कि मैं एक फ्रीडम फाइटर हूं, मैं ट्रेटर नहीं हूं या मैं कोई गद्दार या टेररिस्ट नहीं हूं, और ये मेरे खिलाफ जितने भी केसेस लगाए गए हैं ये फैब्रिकेटेड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो अगर आजादी के लिए लड़ना क्राइम है तो ये क्राइम मैं करता रहूंगा। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उनके ऊपर भी कुछ सजाएं लगाई गई हैं।
ओहो,
उनके ऊपर भी ये आज बड़ा ये भी हिला देने वाली खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जी वो कटा खोल दिया ना असल में यहां पे इन्होंने एक दिसंबर 27, 1988 का केस इनके खिलाफ खोल दिया है, जिसमें क्या हुआ था कि गुरनाम सिंह जो थे पटियाला चौक के अंदर उनके साथ इनका आर्ग्यूमेंट हो गया था, और इन्होंने गाड़ी से बाहर निकल के ना सिर्फ उनके सर पे जो है घूंसे मारे बल्कि उनको जो है ड्रैग किया गाड़ी से और उनकी गाड़ी की चाबी तक वो लेकर चले गए, एंड इवेंचुअली जब उनको लेके गुरनाम सिंह जी को जब हॉस्पिटल लेके गए तो उनकी डेथ हो गई। तो फैमिली कहती है कि इसने जो घूंसे मारे थे उसको उसकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हुई है। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक साल की आजादी है, और ये जो 34 ईयर पुराना जो है केस खोला था और उसमें उन्होंने कहा जी कि तो उसके ऊपर सिद्धू साहब ने कहा है कि ठीक है मैं बिल्कुल लॉ अबाइडिंग मैं सिटीजन हूं और मैं बिल्कुल उनकी बात मानता हूं, तो यानी कि मैं रहूंगा जेल में रहूंगा एक साल, हां जी ऐसे रहूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद जो है जी उसका मसला भी फिर शुरू हो गया और फिर हाल नहीं हो रहा। असल में हुआ क्या है कि यहां पे हमने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि कोर्ट ने कहा था कि इसका कुछ सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ हिंदू जो पूजा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये जो थी मस्जिद नहीं थी पहले, और ये जो था यहां पे पूजा होती थी बड़े अरसा पहले, तो यहां पे कुछ जो है शिवलिंग मिल सकती है आपको। तो अब उन्होंने जाके कोर्ट को कहा कि हमको शिवलिंग मिली है। AIMIM के जो चीफ हैं ये असुद्दीन अवेसी साहब, उन्होंने कहा ये जो शिवलिंग जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ना वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, और वो फाउंटेन जो है उस पे हम सारे नमाज से पहले मुसलमान वजू करते हैं। अगर ऐसे ही आप हर चीज के ऊपर एतराज करना शुरू हो गए तो ताजमहल के अंदर तो बेतहाशा ही फाउंटेन्स लगे हुए हैं, तो वो तो फिर आपको पूरा ताजमहल शट डाउन करना पड़ेगा। तो ये कैसी आपकी रणनीति है और ये कैसे आप जो है इस पे जो है लॉज बना रहे हैं और आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये इसके ऊपर जो है ये एक मस्जिद है, और फिर से वो एक दफा से बहस आ गई है कि वो जो रिलीजियस जो एक्ट है उसके मुताबिक आप किसी की भी रिलीजियस जो जगह है इबादतगाह को गिरा नहीं सकते और वो नहीं कर सकते। हिंदू कहते हैं कि ये कभी मस्जिद थी नहीं, इसको औरंगजेब ने मस्जिद बनाया था। मुसलमान कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो रिलीजियस एक्ट है 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस एज इज है उनको वैसा ही माना जाएगा। असदुद्दीन अवेसी साहब ने आज बहुत ज्यादा गहरे किस्म के बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये टिपिकल आरआरएस बीजेपी माइंडसेट है, और इनकी लिस्ट में हैं कुछ मस्जिदें और उन तमाम मस्जिदों को ये ढा के मंदिर बनाना चाहते हैं, और ये इधर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर नहीं रुकेंगे, ये अब चीज आगे जाएगी।
एग्जैक्टली
बहुत आगे जाएगी। इस्लामाबाद की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है जी, उसने आज जनाब जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उनके लॉयर ने आके कहा जी कि आप इनको माफी दें और वो करें और आप इनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको खारिज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस वक्त तक इसहाक डार साहब यहां पे आके अपने केसेस को फेस नहीं करेंगे और ऐसे ही गुमशुदा रहेंगे, इनको एक तो नंबर वन एब्सकॉन्डर कहा जाएगा और दूसरा ये है कि ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं हमारी जो है किसी भी जो बात को, इनको यहां पे जब तक इन्होंने आके फेस ना किया तो उस वक्त तक इनके लिए कोई भी हम फैसला नहीं देंगे। और इन्होंने हुक्म दिया कि जैसे ही ये पाकिस्तान आए इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जो है कोर्ट के सामने लाया
फिर
जाए।
तो आएंगे भी नहीं,
हाँ फिर जाहिर है कि वो नहीं आ पाएंगे, अब ज्यादा बीमार हो जाएंगे, अब उधर ही रहेंगे, अब लंदन में रहेंगे। लंदन की आबोहवा वैसे भी अच्छी है ना, ठंडी है, बंदे भी ठंडे रहते हैं, ये इधर तो बड़ी गर्मी चलती है ना मजबे, खासतौर पर लाहौर पे तो बहुत ही गर्मी चलती है, आराम से वहां पे रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पीएमएल की जो मरियम नवाज, मैंने कहा है ना मजद भाई पाकिस्तान की खबरों से एक दिन मुझे हार्ट अटैक आने वाला है माजिद भाई, हल्का हल्का दर्द है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये शुरू हो गया है जी। अच्छा जी, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब आप लोगों के लिए बर्डन बन जाएं तो आपको गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। ते बजी है तुसी अपने चाचे नूं दस्सिए ऐसी बात नहीं करते, नहीं नहीं ये मेरी और आपके बीच में
है, गंदी बची,
ये गंदी बची नहीं बनना। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने कहा जी कि बेतहाशा ये जो इन्फ्लेशन हो गई है और ये जो चीजें जो हैं जब हद से बाहर निकल गई हैं, इन सब का जिम्मेदार जो है इमरान खान नियाजी है, लेकिन हम जो हैं झुकने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है चाहे जो मर्जी मुल्क में बर्बादी हो जाए, आईएमएफ के सामने नहीं जाना और हमने नहीं झुकना, इसलिए हम जो है ना उसके सामने जाएंगे ना झुकेंगे।
कितने दिन के लिए
या पूछ सकते हैं,
नहीं बताया उन्होंने,
नहीं 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 अच्छा, ये आप पूछे ना, अच्छा, यानी सारे क्वेश्चन मैंने कर रहे हैं माजिद भाई, अच्छा, आप किस लिए बैठे हैं,
दोनों में से
आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना,
दोनों में से एक तो बाहर लाया था,
हाँ हाँ ये अर्जी भेजें अब्बा जी को, अर्जी भेजें, ठीक है जी, आप उनसे पूछें, ठीक है जनाब। अच्छा अच्छा जनाब, पीटीआई की जो है पार्टी, पीटीआई जो है पाकिस्तान तरीके, उन्होंने जी आज एक लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है जो चीफ मिनिस्टर है हमजा शरीफ के खिलाफ, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो है इसके ऊपर बड़े केसेस हैं और ये जो है ये नहीं रह सकता और ये जो है इसके इलेक्शंस को भी हम नहीं मानते जो इसने जबरदस्ती कराए हैं। और ये पिटीशन जो थी पीटीआई के एमएनएज मोहम्मद सिप्तेन खान, जैनब उमर, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, सैयद अब्बास और एसएन सलीम ने किया था, और इसकी जो जानकारी थी वो इससे पहले भी एक दिन पहले वो उन्होंने दी थी हमारे जो हैं दूसरे एक और भी मिनिस्टर तो उन फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा है जी कि ये जो हैं जो कुछ मेहम चल रहा है पंजाब के अंदर वो इसीलिए चल रहा है कि लोग हमजा शरीफ साहब को जो है चीफ मिनिस्टर नहीं मानते हैं। आपको पता ही है कि ये जो सारा चला था, हमजा शरीफ साहब को ओथ नहीं दे रहे थे गवर्नर चीमा साहब, फिर ये केस जो है लेकर गए थे लाहौर हाईकोर्ट के पास, फिर फाइनली इनको ओथ दी गई थी अप्रैल 30 को। बहरहाल जी वो कह रहे हैं हम इनको मानते ही नहीं हैं चीफ मिनिस्टर, तो इसलिए हम केस जो है लेके जाएंगे ताकि पता चले वाकई इनके पास नंबर पूरे हैं कि नहीं हैं। इमरान खान साहब ने कहा है जी मुल्तान के अंदर आज ये पब्लिक वो कर रहे थे, मजद भाई इससे पहले भी लाहौर हाईकोर्ट में भी बहुत बड़ा जलसा था इनका वो जो था ना लेक्चर था, तो उसमें तो आज तो ये बात कर रहे थे मुल्तान के अंदर, तो वहां पर भी बहुत बड़ा जलसा था। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो नहीं इस्लामाबाद में, सॉरी ये बात कर रहे थे इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट जलसा जो है हमारा मुल्तान में होएगा और जिस वक्त मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद में आने की आप लोगों ने आना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ फ्रेश इलेक्शंस कराना है, तभी हमें रियल फ्रीडम मिलेगी, हमको फॉरन ये जितने भी मास्टर्स हैं उनको नो बोलना पड़ेगा और अपने मुल्क को अपने मुल्क के हिसाब से चलाना पड़ेगा। और माजिद भाई फिल्म आपने, ये बुक तो नहीं पढ़ी आपने लेकिन मूवी आनंद तो देखी होगी आपने, आनंद देखी थी?
नहीं।
ओ माय गॉड मजद भाई जिंदगी कितनी बेकार गुजारी है आपने।
आनंद,
आनंद मूवी अमिताभ बच्चन की और राजेश खन्ना की, वन ऑफ द टॉप क्लास फिल्म्स, आनंद। अच्छा। आनंद इसको बने हुए 50 इयर्स हो गए हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की बड़ी कल्ट मूवी थी ये, क्लासिक कल्ट क्लासिक थी ये मूवी। तो इनके जो अब ग्रैंड सन हैं उसके एनसी सिप्पी के, समीर राज सिप्पी, अब वो कहते हैं जी कि मैं ये 1971 की जो हिट मूवी थी इसका मैं रीमेक बनाना चाहता हूं। इस पहली जो फिल्म थी ओरिजिनल उसके अंदर राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन थे, बड़ी ये खूबसूरत ना सिर्फ मूवी थी, इसके गाने इसके डायलॉग एक एक चीज जो थी बड़ी अमेजिंग थी। अब जबकि ये कह रहे हैं समीर साहब कह रहे हैं जी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये रिक्रिएट, यानी ये आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए ये इतनी ब्यूटीफुल फिल्म जो है रिक्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन जब इन्होंने ये बात ऐसी कही कि हम रिक्रिएट करना चाहते हैं तो लोग इनके बड़े खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं कि एक कल्ट क्लासिक को रिक्रिएट ना ही करो तो अच्छा है, ऐसे ही रहने दो, मनीष भाई इतने प्यारे गाने थे,
मगर
जब दूर कहीं
रिक्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम है?
वो कहते हैं आप बना नहीं सकेंगे ऐसी ब्यूटीफुल मूवी फिर से,
तो बस फिर
चलो बना लो पर खराब कर लो है, आपका ये मतलब है?
नहीं, अगर ये खराब होगी तो आपने ओरिजिनल देख रहे हैं,
ओरिजिनल देख लें फिर आप। हाँ ठीक है। अच्छा जी, बाजी हमारी वापस आ गई है, कंगना बाजी है जी, कंगना बाजी फिर से वापस आ गई है। कंगना बाजी जो आपको पता ही, हमने आपको बताया था धाकत में अब नजर आएगी, उसकी रिलीज का ये वेट कर रहे हैं। ये सुपर कॉप की एक मूवी है, सुपर स्पाई की मूवी है, जिसके के अंदर ये एजेंट अग्नि बनी हुई है। इनका इंटरव्यू ले रहा था एक जो है जर्नलिस्ट सिद्धार्थ कनान, तो उन्होंने कहा जी कि आप क्या असल लाइफ में भी ऐसी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं अपनी असल लाइफ में भी ऐसी हूं। उन्होंने कहा फिर तो लड़के आपसे इसीलिए डरते हैं? वो कहते हैं हाँ, थैंक यू फॉर यू नो मीडिया पीपल लाइक यू, आप लोगों ने ये फैलाई हुई है बात कि मैं लड़कों को पकड़ के मारती पीटती हूं, इसीलिए मेरे पास कोई लड़का आता नहीं है, मेरी शादी होती नहीं है। भाजी आप इतनी खतरनाक बातें करते हो, मारपीट से क्या काम है? हैं, ऐसी बातें ना करो, गंदे बच्चे ना बनो। अच्छा जी, कांस के ऊपर बड़े ही इमोशनल मोमेंट्स देखे गए, क्योंकि टॉम क्रूज साहब आए और बड़े शान से आए हैं जी वहां पे, बड़े जो तैयारे आए इनके साथ साथ, 8 फाइटर जेट्स आए जिन्होंने के रेड और ब्लू कलर्स जो के फ्रेंच फ्लैग के कलर्स हैं वो छोड़े। तो इन्होंने जिस वक्त तस्वीरें खींच चुके और ऑटोग्राफ्स दे चुके, तो अपनी ये जो फिल्म जो है टॉप गन मैवरिक, इसकी टीम के साथ जब आके खड़े हुए तो सारी जनता वहां पे खड़े होके उन्होंने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। टॉम क्रूज की आंखों में आंसू आ गए। एंड यूएसए के अंदर जनाब बड़ी चेंज आई है, यूएसए के अंदर जो फेडरेशन है सॉकर फेडरेशन, उसने कहा है कि अब जो मर्द और औरतें हैं उनकी तनख्वाहें सही होंगी, सेम होंगी, सेम होंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और वो कह रहे हैं जी कि इवन ये जो फीफा के जो इवेंट्स होंगे इनके अंदर भी सेम मैकेनिज्म शेयर किया जाएगा दोनों। हाँ, तो वो कहते हैं जी ये इसने बड़ी हिस्ट्री हिस्टोरिक ये अग्रीमेंट है जो ये आज जो है ये हुआ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपेरेंटली एंड सूत्रों के अनुसार पीसीबी को कॉम्पेंसेशन दिया है उस टूर के लिए जो इन्होंने कर दिया था, अबैंडन कर दिया था, लेकिन अब ये आ रहे हैं 10 मैचेस को खेलने के लिए, 2 टेस्ट 3 जो है आईसीसी सुपर लीग के मैचेस और बाकी के भी बहुत सारे। तो अब कहा जा रहा है कि ये आएंगे और अपने जो ये मैच अबैंडन करके गए थे उससे जो बड़ा नुकसान हुआ था वो उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद फिर जो ब्रिटिश टीम थी वो भी निकल गई। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, राणा मशहूद अहमद खान जो कि लीडिंग एमपी हैं और एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि रमीज राजा साहब के दिन कम ही है। वैसे तो ये कहता है कि मैं बड़ा इंटेग्रिटी वाला आदमी हूं, अगर इंटेग्रिटी वाला आदमी है तो इसकी गवर्नमेंट चली गई है तो इसको चाहिए था कि ये भी चला जाए, तो मुझे इसके ज्यादा दिन नजर नहीं आ रहे पीसीबी में तो इसको जाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस माजिद भाई, ये क्रिकेट जरा थोड़ी अच्छी चल रही थी इसको भी निकाल रहे हैं आप, मैं आई डोंट वांट टू प्ले,
इनको भी निकाल रहे हैं।
ओके ठीक है जी, ये थी हमारी खबरें
और 6:31 और 38 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और बकिया की खबरें कल साथ, कल जुबा इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और फिलहाल कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम लेता हूँ, उसके फौरी बाद हम आपकी बातचीत करवाएंगे न्यू ब्लू ओंटेरियो पार्टी के जनाब जॉन स्पिना से, एंड ही इज अ कैंडिडेट फ्रॉम मिल्टन ओंटेरियो। जस्ट स्टे ट्यून, वील बी राइट बैक।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
स्वीट महल वाले आदा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 to 700 तक की कैपेसिटी, खाना उही लाजवाब स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉर्न, हुने कॉल करो आते अपनिया पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈਵੇ 413। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਈਏ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਫੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ 99 ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕਾਨਸਰਟ ਸੈਟਰਡੇ ਜੂਨ 11th ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਹੈਮਿਲਟਨ। In association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh Live in Concert.
جی سامنے ناظرین، ویلکم بیک اگین۔ اینڈ 6:34 اور 53 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں، اور جیسے میں نے پرومس کیا تھا آپ سے کہ نیو بلو اونٹیریو پارٹی کے جناب جان سپیرا سے میں آپ کی بات چیت کرواؤں گا۔ ہی از اے کینڈیڈیٹ فار ملٹن اونٹیریو، اینڈ وٹ دے اسٹینڈ فار، وائی ڈو وی نیڈ ون مور پارٹی، وائی دے آر سو ڈفرنٹ فرام ادر پارٹیز۔ I welcome John. And John, how are you?
I'm doing well. Good evening, Abdul. How are you?
Not bad at all. And I have Shazia with me too, okay?
Good evening, Shazia. How are you?
Okay. Hello, Mr. Handsome. How are you?
I'm doing well. Thank you.
Oh, my God. I'm so much in love with your party. It is the party of all the handsome Italians. What is this?
Oh, thank you. Thank you very much for that.
John, we have parties and they have manifestos and party lines and things like that. But why do you need another party? Why are you so different from the other parties?
Sure. Really, what has happened over the last few, probably the last decade or so, in Ontario, we feel that the Ontario conservatives, progressive conservatives, have moved over more to the left of the spectrum, left of center, and we feel that there's no longer any discourse between the parties. The democratic process works when you have the legislature, you have the different parties that are discussing the situations that are coming up in society at the time, in the community, and in order to come up with the best strategies that serve the greatest number of the constituents. We feel that the Ontario Progressive Conservatives have moved over and have left a bit of a vacuum, and that's the space where we're moving into, where we are very concerned about increasing cost of living, inflation, the price of fuel as continues to go up, and we are looking to reduce the size of government and make it more efficient. We believe that that is not taking place now with the existing parties that are
So around. Basically, what I understand is that the New Blue Ontario Party is kind of a right-wing party. Is that am I right?
That's right. On the spectrum, we're right of center with some conservative values in regards to the financial aspect of government.
So, a PC government, PC party. If I ask them, they would say the same thing, that yes, they are the right wing, and I shouldn't say wing, but right side, and on the other side is NDP and what do you call liberals. So do you think that by coming to you in this election, and I believe that you have candidates in all 126 ridings, 124 ridings, so do you think that you can hurt them?
Yeah, we do have, you're correct, we have candidates in 124 ridings, that is all ridings. We were the first party to actually fill the candidacy in each of the ridings.
Wow.
And I do believe that from the discussions I've had, so I've been canvassing obviously for the last couple of weeks, speaking to a lot of the residents of Milton, and I get the sense from the conversations that I've been having that they also feel that the Conservatives have let them down and become much more like the Liberals and the NDP. If you look at their record over the last 4 years, they basically continued right down the same path as the Liberals, Wynne's Liberals and McGuinty's, as far as spending goes and their programs. I truly believe that even if we have four or five members that are elected, or candidates that are elected, we would be able to bring about change. We would definitely be able to keep the government, have those discourse, force them to have the discourse, and be able to bring forward our concerns and push, obviously, the concerns of our constituents in the legislature.
Is this the first time that your party is contesting in any kind of election? Am I right?
That is correct, yes. This is the first time. The party was registered about approximately a year and a half ago. The leader is Jim Karahalios, and he used to be with the Progressive Conservatives on the federal side. He was running for the leadership prior to O'Toole becoming the leader of the federal Conservatives. There were some issues that took place. He's very disenchanted with the corruption and so the lobbyists taking control of the party, and broke away from the PC, and then created, was one of the founders of the new party, the New Blue Party of Ontario.
So being the first time, how many seats would you satisfy?
Well, obviously we would love to win 51% of the seats in order to become government.
Yeah.
But I think, and that's our goal, we have, like I said, the 124 candidates and 124 ridings, but I believe, for myself personally, if we end up with a handful of candidates sitting beside Belinda Karahalios, who has done an unbelievably fantastic job of keeping the Conservatives ensuring that they were not taking total control of the policies that were being implemented over the last 10 years. I think with another handful of MPP sitting beside Belinda, we would be satisfied that we'd be able to keep the government to account.
Yes, Shazia.
Yeah. Yes, John, this seems to be very, very, ambitious plan to win five seats in the first go. Who do you think is your competition amongst the traditional parties?
Obviously, the front runner are the PCs. The discussions that I've had with the residents while we've been canvassing, there are many Progressive Conservative supporters, despite their lackluster performance over the last 4 years. So I would say that they are the front runners. In Milton here, we also have, we have a candidate with the Liberals who has prior experience in politics, has been at the municipal level, and I believe that, she probably has a good chance as well of making inroads and becoming the MPP for the riding of Milton.
Okay, what are some of the salient features of your platform that make you different from the traditional parties?
Sure. We're definitely looking at growing the Ontario's economy, and we believe that we can probably grow it close to 5% by eliminating the red tape and making it easier for people to, for businesses to operate in Ontario. We're going to reduce the cost of electricity by, we believe, 5%. We'll be able to get GDP growth by 5% as a result of reducing electricity rates, which right now are highly subsidized. I'm not sure if your audience is aware that we pay approximately 80 cents per kilowatt as a subsidy to green energy, so with wind turbines and solar energy and biomass. And that obviously puts a great burden, whereas we can generate a kilowatt of electricity at Darlington, last I heard, was for approximately 3 cents or so. So that's one of the areas. The other area is we are going to cut the HST, so the tax, from 13% to 10%, which automatically now puts that 3% back in the hands of families who can make the best decisions on how to spend that money, how to use that money as well. The other thing we're looking at is the carbon tax. So some people in your audience may recall a number of years back the initiative that was put forward, Axe the Carbon Tax. Well, Jim Karahalios was the architect of that, and obviously with the increasing cost of fuel, we'd be also looking at eliminating the Ontario portion of the carbon tax, which works out to approximately 10 cents, once again, putting money back in the pockets of Ontarians.
We are speaking to John Spina, a New Blue Ontario Party ke candidate hai ye Milton se. And
nayi party hai
and very energetic. The picture that we are showing on TV, I wish you were on TV right now, but you are going on radio and TV, and thousands of people are listening to you. And this picture, is it a new picture or old picture?
This is a new picture.
This is a recent picture, yes.
Oh, okay. That's all right. Okay. I just wanted to confirm it, yeah. Anything else you want to convey your message to all the voters in your constituency?
Yeah, sure. I've stepped up into... I haven't run for office before in the past. I'm running because I have a strong belief that it's time for change. I will be accountable to the residents of Milton, and my goal is to get input, public input, from all the constituents, all the residents of Milton. I truly believe that, and I've done this throughout my career working in the electrical utilities industry, is you need to involve all the stakeholders, gather the information while you're developing your strategies, your policies that you're going to implement. You need to keep the public and the residents in the know, so keep them updated. I call it ENC, so engagement and communication, and then come up with a strategy or policy that benefits the greatest number of people within the community. In some cases, we may not satisfy everyone because people have different perspectives, but my goal would be to ensure that everybody understands how we got to the final decision, so that people tend to be a lot more accepting when they understand why you made the decision. And that's the promise that I make to the constituents of, or the residents of Milton.
John, are you people, yes, you have touched upon economy and gas prices and all of this, but are you guys also talking about this, problem of crimes and housing and, definitely it's more dealt with by the federal part, the immigration, but a lot of immigrants are coming to Ontario. So are these issues also being discussed, and are they a source of concern?
They are. I believe that, we need to definitely, immigration for Canada is important. We need to ensure, and I hear this from many new immigrants to Canada.
Because you live in Milton, and Milton is full of immigrants.
Oh, exactly. And what I'm finding is that a lot of them, they come to Canada, and from the discussions I've had, many people They leave their country. They come here. My parents were immigrants to this country as well. They came here back in the 60s, and they come here with certain aspirations. And then when they get here, in a lot, in some cases, some people that I've spoken with, they find that the government may have promised more. They come here having had skills that they've developed back home. They get here, and now they're struggling because all of a sudden they find out they have to redo certain certification. And in my mind, it's really important that the, and I would push for this obviously to whatever degree I could, is that we set people up for success. And the way you do that is you set them up for success prior to getting here. You have to be very, very transparent and let them know what they're going to require in order to, you know, continue in their profession when they arrive here.
Yeah.
John, I know that this is a very busy time for you, and I really appreciate that, you know, we got somebody from New Blue Ontario Party. John, thank you so much, and looking forward to talking to you and your party again. And I wish you nothing but very good luck. All the best to you.
Thank you. Thank you both, and thank you for to your to all of your listeners. I appreciate the time that you've given me to have people know who John Spina is. Appreciate it. Thank you very much.
Thank you.
Most welcome.
Thank you. John Spina se humne aapki baatcheet karwai sahab, and John Spina candidate hain New Blue Party of Ontario ke, and
aur majid bhai aapko pata hai ki hum pehle wo hain jinhone inko inki party ko aaj introduce karaya. Nobody is talking to them. Can you imagine?
Wow.
People are only talking to the traditional four families, parties.
So,
we have thought that we are different. So, these people are struggling with this long procedure, their registration. Because you know, when you have a political party, banane lagte hai, there is a set criteria that you have to do. So, there was a long process. Just that, a new force came. Nobody is talking about them. जैसे कि कभी आपने आपको याद है पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा आई थी तो नोबडी वाज टॉकिंग टू देम सिर्फ 770 बात कर रही थी उनसे तो अब ये एक नई पार्टी आई है तो हमने सोचा कि भाई ये नई पार्टी जो है इनसे भी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या प्लेटफार्म है बाकियों का तो हमें पता ही है हम ट्रेडिशनल जो हमारे हैं वो तो आते ही रहते हैं हमेशा पूरा साल भी आते रहे हैं पीसी के लोग भी लिबरल्स भी दूसरे
एंड आई बेट यू दैट आज जब हम इंटरव्यू कर रहे थे और जब हमने कहा कि न्यू ब्लू ऑन्टारियो पार्टी बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स एंड व्यूअर्स होंगे
जिनको पता ही
पता ही होगा कि ये कौन सी पार्टी
ये कौन है ये कोई एक और आ गई ये चौथी आ गई है क्योंकि ग्रीन पार्टी का अभी तक पूरी तरह लोगों को नहीं पता है
हां तो इसलिए मैंने कहा कि वो ये जो है आज लोग जैसा आपने कहा ना कि न्यू ब्लू ऑन्टारियो पार्टी तो लोग पता ही नहीं होगा कि ये कौन सी पार्टी आ गई मतलब ये कहां से क्या है
तो ये 770 का कमाल है ना माजिद भाई कि डिग करते हैं फाइंड आउट करते हैं अपनी कम्युनिटी पे आंखें लगाए रखते हैं पता चलता जाए उनको कि व्हाट्स न्यू कमिंग सिर्फ खाने की बातें नहीं हम करते हैं माजिद भाई हम और भी
खाने की करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट
हां
मगर
कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें
करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं
सो
शादी जी थैंक यू सो मच माजिद भाई एंड वी गोना गो विद सम स्पॉन्सर्स मैसेजेस एंड विल बी राइट बैक
A stunning house for sale in Mississauga. 4+1 bedroom, 4 bathroom, all brick home, the large kitchen, new stainless steel appliances, spotlights, backsplash and slate floors. The modern glass railing staircase, new flooring, new electric fireplace and the fully finished basement. Located in prestigious Aaron Mills area, easy access to 403 minutes from UFT campus, shopping and transit. For more information, call Arifa Muzaffar 647-898-6245 or Majid Jamal at 416-893-2223.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
क्या आपको मॉर्गेज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? मॉर्गेज डिलीजेंट के मुकेश चौहान कैन हेल्प. विद 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ही स्पेशलाइजेस इन मॉर्गेजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड. कॉल मुकेश चौहान 6475127000. और अगर आपको बैड क्रेडिट, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी जैसे इशू हैं और बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, वेदर यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और नीड रीफाइनेंस और प्राइवेट मॉर्गेजेस, कॉल मुकेश चौहान 6475127000. FSRA 10252. कंडीशन अप्लाइज.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो.
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ.
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर.
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट.
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 4167928792.
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन. एंड सब 6:54 और 36 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं. टाइम तो पूरा नहीं है मेरे पास, मगर फिर भी एक गीत की फरमाइश आई है तो मैं आपके लिए पेश करता हूं. तिनका ये गीत समाप्त फरमाइए. इसके फौरी बाद आज 7 बजे भूली बिसरी यादें विद जनाब लियाकत मलिक साहब के लिए पेश करेंगे. गुलाम अब्बास को आज ट्रिब्यूट दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे गाने इनके, तो आप देखना और सुनना नहीं भूलिएगा. 7 बजे शुरू होगा, मगर इन द मीन टाइम तिनका समाप्त फरमाइए. 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा. तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा. हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है. बस कोई समझे जरा दिन का जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा.
फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈਵੇ 413। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਈਏ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਫੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ 99 ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕਾਨਸਰਟ ਸੈਟਰਡੇ ਜੂਨ 11th ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਹੈਮਿਲਟਨ। In association with Tross Expert, Autobahn, Roadlink, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh Live in Concert.
Oh my Amendi Roka, ya vyada hove moka, President Convention Center.
ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬੌਨ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। 416-433-9191